आज है 5 जुलाई 68 का प्रातः क्लास। दूसरे पेज का आगे बाप भी याद करते हैं ना, फलाने की आत्मा बहुत अच्छी सर्विस करती है। फलाने माना कोई भी सर्विसेबल बच्चे हैं, जो आत्मिक स्थिति में रह करके अच्छी सेवा करते हैं, तो बाबा की उन आत्माओं के ऊपर नजर जाती है। भले यहाँ भी है, वह उनको याद करना पड़ता है। जैसे कहेंगे देहरादून में प्रेम बच्ची है, बहुत अच्छी सर्विस कर रही है, याद तो जरूर शरीर से ही करते होंगे ना। बाप बहुत क्लियर करके समझाते हैं, याद करने वाली तो आत्मा है, लेकिन आत्मा बिगर शरीर के याद नहीं कर सकती। कहा मुझते तो नहीं हो कि पता नहीं किसको याद करना है, कैसे याद करना है। ऊपर में बाबा को याद करना है या इस रथ में याद करना है, कोई कोई को बुझान होती होगी। रथ पर बाप क्यों आया है? याद करना होता तो परमधाम में भी बैठ करके तो याद, तो बाबा चला गया शरीर छोड़ के, तो परमधाम में उसे याद नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न कर दिया, रथ पर बाप क्यों आया है, क्या जवाब होगा? जवाब तो मुरली में ही दिया हुआ है कई जगह कि आत्मा शरीर बिगर जैसे जड़वत है, शरीर धारण करती है तो चैतन्य बनती है। तो याद किसको करना है, जड़ को याद करना है या चैतन्य को याद करना है? चैतन्य को याद करेंगे। जितने भी विधर्मी हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये साकार में निराकार को याद करते हैं या सिर्फ निराकार को याद करते हैं? सिर्फ निराकार को याद करते हैं। तो सिर्फ निराकार को याद करने वाले दुनिया का ध्वंस करने के निमित्त बन जाते हैं। दुनिया को नीचे ले जाएंगे या ऊपर ले जाएंगे? नीचे ले जाएंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन होता है अणु के ऊपर, लेकिन जड़ अणु को याद करते हैं। तो दुनिया का विनाश करने के लिए सामग्री तैयार कर ली। बुद्धि बहुत तीखी है, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि भी दुनिया के ध्वंस के काबिल बन जाती है। क्या कमी रह गई? अणुअणीयांशम मनुस्मरेत्य, ये तो गीता में भी बोला है कि आत्मा अणुरूप है, लेकिन साथ साथ गीता में ये भी बता दिया है कि वो ज्योतिर्मय है। तो वो ज्योतिर्मय ज्योतिबिंदु जब तक शरीर न धारण करे तब तक जड़वत है, चैतन्य नहीं है। तो मान लो परम धाम में भी अगर याद कर लिया तो चैतन्य तो नहीं कहेंगे। चैतन्य की भी परिभाषा मुरली में बताई है, बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। क्या बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है? तो परम धाम में अगर ज्योतिबिंदु है सुप्रीम सोल तो बोलता चालता है क्या? नहीं। वो परमधाम वासी ज्योतिबिंदु जब शरीर में प्रवेश करता है तो बोलता चालता है, चैतन्य कहा जाता है। उस चैतन्य को याद करने से हमारी आत्मा भी चैतन्य बनेगी। 2000 साल से मनुष्य भक्ति करते आए, पत्थरों की पूजा करते आए, तो पत्थरों को याद करते करते क्या बन गए? पत्थर बुद्धि बन गए। जैसे को याद करेंगे वैसी स्टेज बन जाएगी। तो प्रश्न कर दिया बाबा ने, रथ पर बाप क्यों आया है? ये बुद्धि को खोलने के लिए प्रश्न है, इसलिए आया। इसलिए आया कि रथ में आएगा तो चैतन्य रूप में पार्ट बजाएगा, बोलता चालता पार्ट बजाएगा। बोलते चालते को याद करेंगे तो हम याद करने वाले भी चैतन्य बन जाएंगे। अच्छा, दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आया बोलते चालते में, लेकिन वो तो शरीर छूट गया, अब किसमें याद करें? तो बाबा तो आया हुआ है इसलिए बोला। आया हुआ है अभी तो नीचे है ना, अभी माना कभी है, अभी माना कभी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, कभी संगम युग में। जब तक संगम युग है असली, क्या जब तक संगम युग है तब तक वो नीचे है। नीचे काय के लिए है? नीच को ऊंचा उठाने के लिए है। तो नीच क्या ऊंचे उठ गए? नहीं। इसलिए बोला अभी तो नीचे है ना, दुनिया तो इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। किन बातों को? कि वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर नीचे आया हुआ है। ये तो परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। दुनिया वाले क्या कह देते हैं? ये परमात्मा सर्वव्यापी, वो एक रथ में आता है, वो एक व्यापी बन के आता है। और दुनिया क्या कह देती है? सर्वव्यापी है। कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, परशुराम अवतार, ऐसे ऐसे नाम रख वो चित्र बनाए देते। कछुए का चित्र बना दिया उसमें व्यापी है, हैं? कौन से? अरे सभी दुनिया की बात हो रही, बाहर की दुनिया वाले नहीं कहते हैं कच्छ मच्छ अवतार। बी के दुनिया वालों में हाथ पांव समेट के बैठ जाएंगे कछुए की तरह, मन चंचल चारों तरफ घूमता रहेगा। तो मन को अगर कंट्रोल न कर पाया और कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो कछुए जैसी स्थिति हुई ना, मच्छ अवतार, माछला, घड़ियाल। वो क्या करता है? जो भी छोटी छोटी मछलियां हैं उन सबको खा जाता है। मछलियां कहाँ रहती? जल में रहती हैं, वो तो ह्यूमन मछलियां नहीं है। भगवान आता है तो किसको पढ़ाता है? जानवरों को पढ़ाता है या मनुष्यों को पढ़ाता है? तो जिन मनुष्यों को पढ़ाता है उनमें कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो मछलियों में से मिसल होते हैं। जैसे मछली में गंध निकलती रहती है, ऐसे उनमें भी गंध निकलती है। छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। गंगा जी की सवारी किसके ऊपर दिखाई जाती है? मगरमच्छ। वो सारी मछलियों को खा जाता है। तो ऐसे ऐसे मगरमच्छ में भगवान को व्यापी बताई दिया। कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, परशुराम अवतार, ऐसे ऐसे नाम रख करके उनके चित्र बनाए दिए। चित्र किसकी यादगार होती है? जरूर किसी ने माछले जैसा चरित्र बजाया होगा, दिखाया होगा, कोई ने कछुए जैसा चरित्र दिखाया होगा। बाप समझाते हैं, वो सभी है भक्ति मार्ग की रंग बातें। क्या कैसे? माने वो जानवरों में नहीं आता हूं, ढेर सारे मनुष्यों में भी नहीं आता हूं। जो मनुष्य कच्छ के स्वभाव वाले हों या माछले के स्वभाव वाले हों या घोड़े के स्वभाव वाले हों, उन अनेकों में नहीं आता हूं। मैं तो सिर्फ एक व्यापी होकर आता हूं। वो है भक्ति मार्ग की रंग बातें। बाप रंग और राइट दोनों बात समझाते हैं ताकि कंट्रास्ट करके समझ सको। राइट क्या है वो भी समझाते हैं। बाप को कहां याद करना है फिर प्रश्न किया। पहले इशारा दे दिया। क्या इशारा दिया? रथ पर बाप क्यों आते हैं? दूसरा इशारा दिया, अभी तो नीचे है ना, नीचे है तो नीचे ही याद करना चाहिए ना, ऊपर परमधाम में थोड़े याद करेंगे। एक मुरली में तो कह दिया, जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो शूद्र संप्रदाय। क्या इसे क्या साबित हो गया? वो कभी देवता नहीं बनते हैं। जो देवता नहीं बनते हैं वो कभी ब्राह्मण भी नहीं बने होंगे, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है। तो वो सब शूद्र संप्रदाय हुए जो द्वापर युग से आते हैं। ऊपर कोई याद करते, नीचे याद नहीं करते। तो पूछा, बाप को कहां याद करना है? बाप तो यहां रथ पर है ना, कि काम पूरा करके ऊपर चला गया। आया तो है पुरानी दुनिया का संहार करके नई दुनिया बनाने के लिए, तो 69 में ऊपर चला गया क्या? बाप तो यहां रथ पर है, नीचे ही सभी की सेवा करते रहते हैं। उनकी मुख्य सेवा कौन सी है? पतितों को पावन बनाना। ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कि 69 में पतित जितने भी थे वो पावन बन चुके। नहीं, जब तक उनकी सेवा पूरी न हो जाए, इस 500-600 करोड़ मनुष्यों की दुनिया में सारे ही पतित हैं, उन सब पतितों को पावन बना के पावन धाम में ले जाएगा। तो नीचे ही सभी की सेवा करते रहते हैं बच्चों द्वारा। क्या ऐसे नहीं, शिव ज्योति बिंदु खुद फुदक फुदक की सेवा करता है। सेवा भी किसके द्वारा करते हैं? बच्चों द्वारा। बच्चे बुलाते भी हैं, आज बाबा हमको भक्तों के पास ले चला, ले चलो। वो देवताओं की कैसे पूजा करते हैं? कौन? भक्त लोग। वो भी दिखाया है, पत्थर की मूर्ति बनाए, उनको श्रृंगार करके कितनी पूजा करते हैं। है कहाँ की यादगार? भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं यादगार तो यहाँ की है ना। क्या यादगार हुई? जो भी पत्थर बुद्धि बच्चे हैं, जब भगवान आता है तो क्या करते हैं? उन पत्थर बुद्धि बच्चों को श्रृंगार करते हैं ज्ञान से, गुण रत्नों से, और श्रृंगार करके जब श्रृंगारे हुए हो जाते हैं तब वो अपने फॉलोअर्स के द्वारा पूजनीय बन जाते हैं। तो बोला पत्थर की मूर्ति बनाए, उनको श्रृंगार करके कितनी पूजा करते हैं। ये पूजा करने वाले भक्त अभी प्रत्यक्ष होंगे कि नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में? ये सारे देवता बन जाएंगे? सारे देवता नहीं बनेंगे। जब देवियों को विदाई देते हैं तो रोने लग पड़ते हैं, श्रृंगारते हैं, पूजा करते हैं, फिर जब उन देवियों की विदाई देते हैं तो रोने लग पड़ते हैं। जैसे कोई चैतन्य में कोई बिछुड़ते हैं ना, तो क्या करते हैं? रोने लग पड़ते हैं। इतना लगाव लग जाता है भक्तों को किन में? उन देवियों में। किन देवियों में?
चैतन्य देवियों में।
हाँ, जिनको वो समझते हैं ये देवियां बन गई। उन देवियों में श्रृंगार करने में ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं। मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति बनाने में पैसे तो खर्च होते हैं। दुनियावी भक्त जो है वो जड़ मूर्ति बनाते हैं, और ब्राह्मणों की दुनिया में चैतन्य मूर्तियों के पैसे पीछे पैसे खर्च करते हैं। तो मूर्तियां बनाते हैं और जब वो मूर्तियां बिछड़ती हैं, उनको विसर्जन करते हैं, विदाई देते हैं। क्यों विदाई देते हैं? असली भगवान जब मिल जाएगा, जो असली पतितों को पावन बनाने वाला है, तो देवियों की पूजा क्यों करेंगे? तो उनको विसर्जन कर देते हैं। तो जैसे कोई चैतन्य में बिछड़ते हैं तो रोते हैं ना, क्यों रोते हैं? लगाव लग जाता है। तो यहां भी क्या होता है? यहां भी ब्राह्मणियों में लगाव लग जाता है तो रोते हैं। बड़े बड़े घर वाले मूर्ति को डुबोने पर रोने लग पड़ते हैं, छोटे घराने वाले नहीं, बड़े बड़े घराने वाले। जैसे उनको डुबोते हैं, नहीं डूबती है तो लात मार करके भी डुबोते हैं। एडवांस में जिनको भगवान का सही परिचय मिल जाता है तो फिर क्या करते हैं? जैसे कृष्ण को दिखाया है हथेली पे तीरी पे बहिष्ट दिखाई है और लात में नरक दिखाया, तो नरक को क्या करता है? लात मारता, हमें नहीं चाहिए जाओ। तो ऐसे ही देवियां अगर नहीं डूबती हैं तो क्या करते हैं, उनको लात मार के डुबो देते। कितना उनको श्रृंगारते हैं, कितना अच्छे अच्छे भोजन खिलाते पिलाते हैं, वो सभी है उनकी भावना किसके प्रति,
देवियों
के प्रति। मूर्ख तो बहुत होते हैं ना, फिर जाकर के बोल देते। मुसलमान लोग भी कितने बड़े बड़े ताबूत बनाते हैं, सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं, मुसलमान लोग क्या करते हैं, ताजिया, ताज माने अब मुकुट का भी कोई बेहद का अर्थ है ना, ताज माने जिम्मेवारी का ताज। तो जिसको समझा कि ये हमारे ताजिया हैं, इन्होंने जिम्मेवारी का ताज धारण कर रखा है, जिनके ऊपर उनको विश्वास है कि इन्होंने जिम्मेवारी का ताज धारण किया हुआ है, ये सारी दुनिया को क्या करेंगे, पवित्र बनाने का ताजधारी है। जब असलियत पता चलती है तो मुसलमान भी उन ताजिया को क्या करते हैं,
दफन करते हैं।
मुसलमान लोग भी कितने बड़े बड़े ताबूत बनाते हैं। आजकल पैसे कम हो गए हैं तो वो फिर संभाल के रख देते हैं। तो उनको गिराते नहीं है, डुबोते नहीं है, कफन नहीं करते हैं, उनको संभाल के रख देते। फिर 12 मास के बाद मरम्मत आदि करके फिर निकालते हैं। यूं तो मंदिरों में मूर्तियां स्थायी रखी हुई है, परंतु ये खास दिन पर बैठ देवियां बनाते हैं क्या? मंदिरों में तो मूर्तियां देवी देवताओं की, गणेश जी की हो या देवियों की हो, मंदिरों में तो स्थाई रखी होती है, लेकिन फिर भी जब देवियों की स्पेशल पूजा होती है या गणेश जी की पूजा होती है जैसे बंबई में, तो क्या करते हैं, खास दिन पर बैठ देवियां बनाते हैं। हाँ, उनको खिलाए पिलाए फिर डुबो देते हैं। ये भी अज्ञान हुआ ना क्या, कि जब तुम्हें डुबोना ही था तुमने इतनी उनकी परवरिश क्यों की, इतना उनका मान मर्तबा क्यों बढ़ाया है? अभी बाप सन्मुख कहते हैं, तुमको कितने पैसे आदि दिए, कितने तुम धनवान थे और अभी कितने कंगाल बन पड़े, क्या करते करते ये अंधश्रद्धा की भक्ति करते करते कितने कंगाल बन पड़े हो। बाप सन्मुख समझाते हैं, क्या कहा, सन्मुख समझाना माना डायरेक्ट समझाते हैं। बाप ये नहीं कहा माँ समझाती है, क्यों, ब्रह्मा के द्वारा समझाया या सिर्फ सुनाया, बाप सिर्फ सुनाया, समझाया नहीं, यहां बोला बाप समझाते हैं और सन्मुख समझाते हैं। इनका रथ तो मुकर्रर है ना, इनका जो सन्मुख समझाते हैं, इन बाप का रथ तो मुकर्रर है ना। कितने तरह के रथ बताए, एक मुकर्रर रथ और एक टेम्परेरी रथ। तो 68 से पहले तो एक ही रथ था ना, कि दो थे, एक ही था, तो उसको टेम्परेरी रथ कहें या मुकर्रर रथ कहें? मुकर्रर होगा तो जरूर जब तक काम पूरा ना हो तब तक वापस नहीं जा सकता, और टेम्परेरी होगा तो टेम्परेरी काम किया और बीच में चला गया। तो सन 68 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वो माता का पार्ट था, बाप का पार्ट नहीं था। तो इनका रथ तो मुकर्रर है, इन द्वारा ही समझाते हैं। किन द्वारा? टेम्परेरी रथ के द्वारा नहीं समझाते, टेम्परेरी रथ के द्वारा सुनाते हैं। और मुकर्रर रथ जो बाप का रथ है डायरेक्ट, उसके द्वारा समझाते हैं। क्यों ये भेद क्यों कर दिया? माँ ने पार्ट माँ के रूप में पार्ट बजाया और बाप के रूप में पार्ट बजाया, इसमें ये सुनने और समझाने का फर्क क्यों किया है? हाँ, कन्याएं माताएं जो होती हैं वो होती हैं भक्तियां। क्या बोला? तुम सब हो सीताएं, माने भक्ति, और ज्ञान सागर है एक। तो इन द्वारा समझाते हैं, कब कब कोई और के रथ में भी जाकर के किस किस पॉइंट पर समझाते हैं। मुकर्रर रूप से नहीं, कैसे? कब कब? कब कब माने
जरूरत पड़ेगा।
हाँ, कोई की खास सेवा करनी पड़े, कोई व्यक्ति किसी को नहीं समझा सकता है, जिज्ञासु तीखा है लेकिन समझाने वाला हिम्मत तो कर रहा है, तो हिम्मत है बच्चे
मदद देगा,
तो मदद दे बाप। तो बाप क्या करते हैं? मदद दे देते हैं। तो बाप आकर मदद देते हैं किस बात की? जो किसी कब कब किसी बच्चे में प्रवेश करते हैं सेवा के लिए, किस बात की सेवा करते हैं, कौन सी मदद देते हैं? दृष्टि के फोर्स की मदद देते हैं, और दूसरी वाचा की प्रबलता की मदद देते हैं। बच्चा उतना नहीं समझा सकता है तो बाप वाचा की मदद देते हैं, दृष्टि की मदद देते हैं और वाइब्रेशन की मदद देते हैं, और वो वारसदार आत्मा निकल पड़ती। तो कब कब कोई कोई और के रथ में भी आकर के किस किस पॉइंट पर समझाते, तो कब कब से क्या साबित हुआ कि जिन बच्चों में कब कब, हमेशा नहीं, कब कब प्रवेश करके सेवा का पार्ट बजाते हैं सुप्रीम सोल, तो वो मुकर्रर रथ नहीं है। कैसा रथ हुआ? टेम्परेरी रथ, टेम्परेरी सेवा के लिए। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा ने इस द्वारा ही अपना परिचय दिया। क्या कहा? इस कहा तो किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा की तरफ। बाबा ने इस द्वारा ही अपना परिचय दिया है। अब यहां इस शब्द दो अर्थक हो गया। शुरुआत से किस बात में बात हो रही है? रथ की बात हो रही है ना, तो रथ की जब बात हो रही है तो यहां इस शब्द रथ के लिए भी लागू होता है, और इस जब कहते थे तो ब्रह्मा के लिए भी लागू होता था। तो बोला अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा ने इस द्वारा ही अपना परिचय दिया है। किस द्वारा? रथ द्वारा। मैं जब इस रथ में आता हूं तो मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं। क्या मैं जब इस रथ में आता हूँ तो जितने भी पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ करने वाले करोड़ों की तादाद में, उनमें से कोई मुझे पहचानते हैं। मुझे याद तो सभी करते हैं। क्या था?
पहचानते कोई?
लाखों करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेगी। तो याद तो सारे ही मुरली पढ़ने वाले करेंगे, लेकिन मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूं, उस रूप को ज्यों का त्यों समझ करेंगे कोई फोटो में, कोई कोई याद करते हैं, पहचानते हैं। भारतवासी खास और दुनिया आम याद करती है। क्या खास याद किसको आती है? जो आज से लेकर के अंत तक भारत में पार्ट बजाने वाली आत्माएं, उनको खास याद आती है। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे देश के लोग हैं, वो आम रूप से याद करते हैं जनरल। परंतु उनको याद, उनको यह नहीं पता है कि बाबा अभी नीचे आया हुआ है। किनको? जो दूसरे देश के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको ये निश्चय नहीं बैठता कि वो सुप्रीम सोल बाप नीचे आया हुआ। यहां भी ऐसे कहां बीज रूप आत्माओं में तो सारी दुनिया के बीज ऐसा तो कहां याद करते? तो उम्र याद करते। तो बाबा अभी नीचे आया हुआ है ना, आते हैं वह नहीं आते हैं, बेचारे कुछ भी नहीं जानते। परमात्मा को ही ठिककर भीतर में ठोक देते। जब अनिश्चय पैदा होता है तो क्या करते हैं? जैसे मिट्टी का ढेला है, ठोकर मारने से टूट जाता है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं जिनको माया की थोड़ी सी ठोकर लगे और ज्ञान में से टूट पड़े, शादीवादी कर ले, ऐसों में भी भगवान को मान लेते। भीतर जो ज्ञान के रास्ते में भीत दीवार बनकर के खड़ी हो जाए, न खुद ज्ञान की गहराई को समझने दे, न खुद भगवान को जो नीचे आया हुआ है उसको पहचाने, और न दूसरों को पहचानने दे। तो ऐसे भीतर बुद्धि में परमात्मा को व्यापक बनाए देते कि यही भगवान के रूप है, यही स्वर्ग बनाएंगे। कहते भी है अल्लाह गार्डन स्थापन करते, मुसलमान लोग क्या कहते हैं? अल्लाह ने बहिष्ट बनाया। तो कहते भी हैं अल्लाह ने गार्डन स्थापन किया, परंतु गार्डन किसको कहा जाता है वो नहीं जानते। गार्डन होगा तो गार्डन में कांटे होंगे क्या? कांटे जंगल में होते हैं या गार्डन में होते हैं? कांटों का जंगल है द्वापर कलयुग, और फूलों का बगीचा है सत्युग त्रेता। तो भगवान आकर के सत्युग त्रेता रूपी गार्डन की स्थापना करते हैं ये बात नहीं जानते। गार्डन में तो फूल होंगे ना, फूल और कांटे में क्या अंतर होता है? कांटा दुखदायी होता है और फूल, फूल खुशबू देता है, देखने में अच्छा लगता है, सुखदायी होता है। तो कहते हैं अल्लाह गार्डन स्थापन करते हैं, लेकिन गार्डन किसको कहा जाता है वो नहीं जानते। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही गार्डन कहा जाता है क्या? जो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन धर्म है उनको, उनको देवता नहीं कहा जाता है। गार्डन में जाने के लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अभी तुम बच्चे कहाँ बैठे हो हैं? काटोगे जंगल में। तो अभी बाप गार्डन में जाने के लिए पुरुषार्थ कराते रहते हैं, यहाँ बाप भी है। तो कांटा बनाने वाले भी इस दुनिया में, बाप भी है तो कांटे बनाने वाले भी हैं। बाहर में तुम रहते हो, वहां तो रथ होता नहीं क्या? बाहर मन, बाहर की दुनिया में तुम जब रहते हो, मधुबनी की बात छोड़ दो, कहां रहते हो? बाहर की दुनिया में जब तुम रहते हो तो वहां तो रथ होता नहीं, और यहां यहां रथ भी है। रथ भी है तो बाप भी है क्या? एक से काम चल जाए या दोनों चाहिए?
दोनों चाहिए।
बिंदु 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 आत्माओं का बाप, ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल भी चाहिए, और वो सुप्रीम सोल जिस रथ के द्वारा इस सारी सृष्टि को परिवर्तन करता है, वो रथ भी चाहिए। तो बाहर की दुनिया में तो रथ है नहीं, तो तुम बच्चों को रथ को भी जरूर याद करना पड़ेगा क्या? बाहर की दुनिया में याद करेंगे क्या? नहीं, कहाँ याद करेंगे? रथ भी तो कहीं होगा, बाहर की दुनिया में होगा या अंदर की दुनिया में होगा? जरूर ब्राह्मणों की कोई अंदर की दुनिया भी है, जिसको बाबा ने बोला है यहाँ है पुरुषोत्तम संगम युग और बाहर की दुनिया में है कलयुग। ये भी मुरली बोल दिया है। पुरुषोत्तम संगम युग कहाँ होता है? मधुबन में मुरलिया बाजे। तो जहाँ बाप की मुरली चलती है वो है मधुबन। मधुबन में ही बाप आते हैं, बाहर कहीं भी नहीं आ सकते। तो तुम बच्चों को रथ को भी जरूर याद करना पड़े। रथ को याद करेंगे तो रथ का स्थान भी जरूर याद आएगा। वो तो ठीक है, रथ में वो बाप तो है, लेकिन रथ भी कहीं होगा ना, आसमान में थोड़ा ही होगा कि बाहर की दुनिया में होगा। बाहर की दुनिया में नहीं, कहाँ? मधुबन में अंदर। तो तुम बच्चों को रथ को भी जरूर याद करना पड़े। फलानी आत्मा फलाने रथ में बहुत अच्छी सर्विस कर रही है, बाप भी याद करते हैं। जैसे तुम बच्चों को बाप याद करते हैं तो बच्चे भी किसी रथ में बाप को याद करते हैं। बाप कैसे याद करते हैं बच्चों को? हाँ, ऐसे थोड़े कि फलानी आत्मा है। जब कहते फलानी आत्मा तो कोई अलग बात हो गई ना, औरों से अलग बात कैसे हो गई? जब चेहरा मोहरा बदला हुआ होगा तो बात अलग हो जाएगी। अभी आत्माएं अपने अपने रथ में विराजमान है ना, उनको अकाल तख्त कहते हैं। किसको? उनको अभी आत्माएं अपने अपने रथ में विराजमान है ना, उनको अकाल तख्त कहते हैं। वो तो सिखों ने स्वर्ण मंदिर में काठ का तख्त डाल रखा है, क्या लकड़ी का तख्त बना के रख दिया है, उसमें शास्त्र रख दिए, उसका नाम दे दिया है अकाल तख्त। लेकिन बाबा वास्तव में किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? सभी आत्माएं अपने अपने रथ में विराजमान है ना, उनको अकाल तत्व कहते हैं। किनको? ना आत्मा को नहीं अकाल तत्व कहते हैं। तख्त पे तो बैठता है कोई, आत्मा है बैठने वाली, तो अकाल तत्व क्या हुआ? जिसमें प्रवेश करते हैं वही अकाल तत्व है। अकाल का मतलब क्या है? हाँ, तो जरूर कोई नई सृष्टि बनेगी, नई दुनिया बनेगी, तो कोई तो आत्मा ऐसी होंगी जो पुरानी दुनिया से ट्रांसफर होकर के शरीर के साथ नई दुनिया में जाएंगी। उनका रथ काल नहीं खाएगा, तो क्या एक ही होगा? जरूर है, बहुत से ऐसे रथ होंगे जो अकाल तख्त होंगे। उन अकाल तख्तों को बाप याद कर, जो नई दुनिया बनाने में बाप की मदद कर। तो सभी आत्माएं अपने रथ में विराजमान हैं, उनको अकाल तख्त कहते हैं। अकाल आत्मा का ये तख्त है। अकाल मूर्त बाबा जिसकी महिमा भी गाते, ऐसा बाबा जिस बाबा को कोई काल खा न सके, और जिसकी मूर्ति भी है मन साकार भी है, उसकी महिमा गाते हैं। तो तुम कहां भी होंगे रथ को भी जरूर याद करें। क्या इस दुनिया में कहीं भी चले जाएं बच्चे, लेकिन रथ को भी जरूर याद करें। बाप को भी याद करेंगे? ऐसे नहीं कि सिर्फ डब्बे को याद करेंगे। अगर सिर्फ डब्बे को याद किया और सुप्रीम सोल भूल गया तो क्या होगा? सबको सबको याद करने से क्या होगा? हाँ, मुर्दा बन जाएगा। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। उन अंधों ने क्या किया?
सिर्फ
जब्बो को भी याद कर लिया। यहाँ भी ऐसे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, हम ब्रह्मा बाबा के रथ को याद करते रहते हैं। बाबा ने भले मुरली मना कर दिया, इस रथ का चित्र नहीं रखना है, चित्र रखेंगे तो याद भी आएगा। नहीं तो बोला ये तुम जानते हो इस रथ को, इस रथ के फिर साकार में भी हम बच्चे हैं। रथ को तो जरूर याद करना पड़ता है, जबकि बाप है रथ बिगर सोवेगा नहीं। भभकेगा नहीं। क्या जैसे कहते हैं ना भभका, रथ बिगर भभकेगा नहीं, जैसे अशुद्ध सोल भटकती है ना। जो अशुद्ध आत्माएं होती है, प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत, उनको शरीर तो होता नहीं, तो बिना शरीर के इधर उधर भटकती रहती है, तो उनकी कोई शोभा थोड़ा ही होती है। तो बोला रथ बिगर भभकेगा नहीं, जैसे अशुद्ध सोल भटकती है ना। बाप का तो मुकर्रर रथ है, आत्मा खुद कहती है मेरा यह एक ही रथ है। क्या मेरा यह? कौन सी आत्मा कहती है? सुप्रीम सोल। मेरा यह एक ही मुकर्रर रथ है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं। तुम आत्मा पहले पहले छोटे रथ में प्रवेश करती हो। क्या मेरे में और तुम में अंतर क्या है?
हमारे छोटे छोटे
गर्भ के अंदर जो छोटा सा रथ तैयार होता है ना, तुम उसमें प्रवेश करती हो और मैं छोटे में प्रवेश नहीं करता हूँ। मैं तो बड़े रथ में आता हूँ, एक ही मुकर्रर रथ है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ। यहाँ तुम बच्चे आते हो सन्मुख सुनते हो क्या? यहाँ तुम बच्चे जो मधुबन में आते हो वह सन्मुख सुनते हो। सन्मुख माना
सामने सामने
सत्य मुख, जो मुख सत्य है उस सत्य बोलने वाले मुख के सामने ही तुम सुनते हो। सारी दुनिया तो झूठी है, एक सत्य परमात्मा है, इसलिए सत्संग कहा जाता है। दुनिया तो सिर्फ कहती है हम सत्संग में जाते हैं, 2500 साल से सत्संग में जा रहे हैं और दुनिया नीचे गिरती चली जा रही है। तो सत्संग थोड़े ही हुआ, सत्संग तो होता ही तब है जब वो सत्मुख बाप हमारे सन्मुख आता है। मेरा ये एक ही रथ है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ। यहाँ तुम बच्चे जाते हो सन्मुख सुनते हो, आते हो क्या? यहाँ तुम बच्चे आते हो और सन्मुख सुनते हो। बाहर में तो समझते हो बाबा की मुरली आवेगी तब हम सुनेंगे, बाबा की मुरली आवेगी तब हम सुने, और यहाँ तुम सन्मुख सुनते हो। बाप मुरली बजावेंगे तो जरूर यहाँ ही बजावेंगे ना, क्या कहा? क्यों मुरली बजाएंगे तो यहाँ ही बजावेंगे?
मधुबन
में कोई गीता पाठशाला में नहीं ना है? क्यों? तो बात झूठी हो गई। ये 5768 की मुरली का पहला पेज तो गुवाहाटी में भी चला है, हैं? हाँ। तो जरूर इससे साबित हुआ कि भले हमारी दृष्टि में वो अभी गीता पाठशाला है लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जो सारी दुनिया कहेगी कि ये तो मधुबन का सैंपल है। यहाँ तो सबकी ऐसे ही पालना होती है जैसे बाबा के ब्रॉड मधुबन में महामधुबन में होती है। तो बोला बाबा मुरली बजावेंगे तो जरूर यहाँ ही बजावेंगे ना, सभी की नजर जरूर मधुबन में होगी। बाबा मधुबन में है, जिस समय वाणी चलेगी तो सभी की नजर मधुबन में होगी। अभी वहां मुरली चलाता होगा कौन? सुप्रीम सोल अभी वहां मुरली चलाता होगा, इस समय मुलाकात करते होंगे, इस समय बच्चों से मुलाकात करते होंगे। बुद्ध योग ही बच्चों का मधुबन में होगा। तीन बातें हो गई याद करने की, कौन कौन सी ना? एक तो सुप्रीम सोल ज्योतिबिंदु, दूसरा रथ और तीसरा मधुबन स्थान। कोई तो याद किया जाता है ना, तो जिसको याद किया जाता है उसके साथ साथ क्या याद आता है? स्थान भी याद आता है। तो बोला बुद्ध योग ही मधुबन में होगा। मधुबन का नाम भी गाया हुआ है ना, कहाँ गाया हुआ? शास्त्रों में मधुबन का नाम भी गाया हुआ है ना, तो जरूर कोई काम भी हुआ होगा मधुबन में। मधुबन में बाबा मुरली बजाते हैं, दिल तो सभी की होती है। अभी तो तुम बच्चों को ज्ञान है, पहली पहली बात है मनमना भव, अलग उसको पक्का याद करना है। पक्का याद क्या होता है और कच्चा याद क्या होता है? हाँ, बीच बीच में क्या होता है? निश्चय उखड़ जाता है, कभी कम याद आती है, कभी खींच खींच के याद आती है, कभी याद आती ही नहीं है। तो वो कैसा याद हुआ? कच्चा याद हुआ। अभी पक्का याद करना है, फिर बे को याद करो, क्या अलग को याद करो, किसको याद करो?
अलग
अलग माना
ला
ऊंचे से ऊंच। फिर किसको याद करो? फिर बे को याद करो। क्यों?
बात ये
माँ में कम याद करो, फिर बे क्यों गुजर दिए? हाँ, बादशाही जो है बे माने बादशाही, तो वो भी याद करनी पड़े। अलफ और बे और तो बातों में जाने की दरकार ही नहीं। बे से ही राजाई का सारा समाचार सुनाते। तुम कैसे राजाई लेते हो और गवाते हो, वो सारा समाचार सुनाते हैं। अलग तो है ही सभी का बाप।
क्या था?
सबका बाप।
अलग
सबका बाप,
सभी का बाप है,
सभी धर्मों का।
ये नहीं कहा बे सब का बाप है। क्या अलग है? सभी का बाप, सभी मन ऐसे नहीं सिर्फ सनातन धर्म वालों का बाप है, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप है, या सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप है। नहीं, कोई भी धर्म के हो, सूर्यवंशी हो, चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्ध वंशी हो, दुनिया के जो भी 500 करोड़ मनुष्य हैं, वो सबका बाप। वो तो हमको पढ़ाते हैं। कौन? अलफ। अलफ हमको पढ़ाते हैं। 5, 7, 68 की वाणी का तीसरा पेज। मूल बात रहती है विकर्म कैसे विनाश हो। पढ़ाते तो हैं, पढ़ाई मूल बात नहीं है। मूल बात बुद्धि में क्या रखनी है? हमारे पाप कर्म, विपरीत कर्म जो हमने किए हैं, काहे के विपरीत? परमात्मा बाप ने जो हमको पढ़ाई पढ़ाई जो रास्ता जिंदगी जीने का बताया था, उसके विपरीत हमने जो कर्म किए हैं। कब? 63 जन्म की बात नहीं है, कब की बात है? संगम में जब बाप आते हैं तब भी हम श्रीमत जानते भी हैं कि श्रीमत क्या है, बाप को भी पहचान लेते हैं, फिर भी श्रीमत के बरखिलाफ कर्म करते हैं, तो वो विपरीत कर्म हो गए, विकर्म। तो बोला मूल बात रहती है विकर्म कैसे विनाश हो, इसलिए ही आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा। किसको बुलाती है? अलग को बुलाती है। मनुष्यों को तो कुछ भी समझ नहीं है कि कौन बुलाता है, कौन बुलाता है? आत्मा बुलाती है, माना जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चे हैं वो बाप को बुलाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता होगा, बाबा अभी मुरली चला रहे होंगे, मुरली आवेगी, या तो तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, वहां तो भाई भाई बैठते हैं, ये रथ भी जरूर याद आवेगा। क्या कहा? यहां वहां में क्या अंतर बता दिया है? हाँ, मैथ से ज्यादा कौन सा हुआ? फर्स्ट क्लास मुरली कौन सी? और सेकंड क्लास जो वहां छप करके फिर आकर के हमको सुनाई जाए, वो सेकंड क्लास, वो टैप भी जीव करते हुए सुनाएगा, लेकिन उसमें वाइब्रेशन नहीं होगा। क्या वाइब्रेशन नहीं होगा?
सम्मुख
दृष्टि का फोर्स नहीं होगा,
सम्मुख
और शक्ति बुक सामने है, फिर सम्मुख आएगा।
सेकंड क्लास?
हाँ, सेकंड क्लास है। हाँ वीडियो में देख लो तो चेहरा भी देख लो, लेकिन उसमें वाइब्रेशन नहीं होंगे, उसमें बाप की दृष्टि नहीं होगी, उसमें बाप की दृष्टि नहीं होगी, जिस वाइब्रेशन से बाप समझा रहा है वो वाइब्रेशन नहीं होंगे, तो वो फर्स्ट क्लास नहीं। फिर थर्ड क्लास क्या बताया, जो कागज में छपती है मुरली वो थर्ड क्लास। तो यहाँ एडवांस पार्टी में कोई थर्ड क्लास चीज तो लगता है कोई लेता ही नहीं है, किसी के पास नहीं, बाबा के पास है, बस बैठे रहो सुनते रहो, आला है, है?